समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे और आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी, और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनके आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट सरफिरोजी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Delhi Chief Minister Rekha Gupta presents 1 lakh crore rupee budget for 2025-26, allocates 5,100 crore rupees for Mahila Samriddhi Yojana, over 2,000 crore for Ayushman Yojana and more than 3,800 crore for road infrastructure.
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर कथित नकदी बरामद होने के मामले में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज सदन के नेताओं से मिलेंगे।
3 माओवादी किल इन एन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन छत्तीसगढ़'स दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट।
फुटबॉल में AFC एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर मैच में भारत शिलोंग में बांग्लादेश से खेलेगा।
एंड इन IPL क्रिकेट गुजरात टाइटन्स टू लॉक हॉर्न्स विद पंजाब किंग्स एट अहमदाबाद This evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about TB 100 Day. Well, Prime Minister Narendra Modi has said that India's fight against tuberculosis, TB, is witnessing remarkable progress, sharing an article by Union Health Minister J.P. Nadda on key insights from the recently concluded 100-day intensified TB Mukt Bharat Abhiyan. The Prime Minister stated that the campaign has laid a strong foundation for a TB-free India. In his article on World Tuberculosis TB Day yesterday, Mr. Nadda expressed immense pride in how India is redefining its approach to eliminating TB. He highlighted that the 100-day intensified TB Mukt Bharat Abhiyan has not only demonstrated the power of innovation, but also underscored the importance of community mobilization in combating the disease. And also Mr. Nadda emphasized that by accelerating case detection, reducing mortality and preventing new infections, the campaign has significantly strengthened India's fight against TB. He asserted that India is not just fighting TB, but actively working to defeat it.
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि अब देश के सभी जिलों में टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। श्रोताओं को बता दें कि इससे पहले अभियान 455 चयनित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में लागू किया गया था। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस साल के अंत तक देश से टीबी को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नई दिल्ली में कल विश्व तपेदिक दिवस 2025 शिखर सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि भारत में तपेदिक रोग से उपचार का दायरा 85% हो गया है।
किया कि 80% वो मॉर्टेलिटी कम करने में कामयाब रहे, ये उनका प्रयास रहेगा सन 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के, और 90% इसकी मॉर्बिडिटी यानी कि प्रेवलेंस। और हमें इस बात की खुशी भी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम पर डाल करके ये तय किया कि हम 2025 के भीतर ही टीबी मुक्त भारत कायम करने में सफल हो पाएंगे।
And Sarfarazi, yesterday on World Tuberculosis Day, we in Dateline discussed about this disease and how dangerous it is. So now all we want to say is to be aware and take care of your health.
Mm-hmm. और श्रोताओं, अब समय है कि आपको लेकर चलें देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं संभाजी नगर से। नए उद्यमियों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्टार्टअप इंडिया जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्रपति संभाजी नगर के एक युवा उद्यमी योगेश गांवडे ने इन्हीं योजनाओं की सहायता से किसानों के लिए एक ऐसी कीटनाशक स्प्रे तैयार किया है जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। योगेश के बनाए इस स्प्रे की गेट्स फाउंडेशन के प्रमुख बिल गेट्स ने भी सराहना की है। अपने इस अनुभव को योगेश गांवडे ने आकाशवाणी के साथ साझा किया।
फार्मर क्या करता है कि पीठ पे 16 लीटर या 20 लीटर की टंकी लेके वो स्प्रे करते हैं। तो ये स्प्रे करते टाइम जो भी पेस्टिसाइड है वो बॉडी पे आता है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग है, स्किन इरिटेशन है, आई इरिटेशन है, या वो पीठ पे वजन होने की वजह से बदन दर्द है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए हमने एक इंडिया का फर्स्ट व्हील बेस्ड स्प्रेयर डेवलप किया है, जिसमें आपको कोई भी टैंक पीठ पे लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हैंडल पकड़ना और पुश करना है। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, इस दोनों डायरेक्शन में आप ये मशीन यूज कर सकते हो। इसमें 24 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। जो नोजल्स है आप एट ए टाइम 4 या 6 नोजल्स इसको लगा सकते हो। क्रॉप के हाइट के हिसाब से आप उसका हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, और दो रो के बीच जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से आप नोजल्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। और इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई भी महिला किसान इसे आराम से यूज कर सकती है और स्प्रे कंप्लीट कर सकती है। तो ये सारा काम करते टाइम हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू भी हमें सपोर्ट मिला। इसी के साथ मैजिक, मराठवाड़ा एक्सेलरेटर फॉर ग्रोथ एंड इंक्यूबेशन काउंसिल, IIT कानपुर ने भी हमें सपोर्ट किया ये प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप और सेल्स करने के लिए। इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया है, जैसे कि केनिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, मोजम्बिक और रशिया जैसे कंट्रीज में भी हमने एक्सपोर्ट किया।
Mizoram, a state nestled in the northeastern hills of India, possesses a unique agricultural landscape shaped by its topography, climate and cultural heritage. The state has a great potential for organic farming because of its traditional methods and minimal use of chemical inputs, even though traditional practices like shifting cultivation, zoom tills play a big part. And in order to preserve soil and encourage sustainable growth, the Mizoram government places a high priority on organic farming. The government has continuously taken action to give farmers financial support and open up markets for their goods. We have a report.
In order to preserve soil and encourage sustainable growth, the Mizoram government places a high priority on organic farming. The government has continuously taken action to give farmers financial support and open up market for their goods. When it comes to exporting organic produce, Mission Organic Mizoram has achieved significant progress. 20 metric tons of ginger, 10 metric tons of chilies, and 4.2 metric tons of jackfruit were exported by the state in 2024. According to Vana Rohlu Pui, technical assistant with Mission Organic Mizoram, the goal of organic farming is to maintain the fertility and health of the land. By preserving its richness and halting erosion, this agricultural technique optimizes the potential of surface soil. Additionally, it gives plants and other living things a healthy habitat. Crop rotation, planting crops that improve soil fertility, fostering beneficial soil organisms, and properly plowing the soil to prevent disease are important techniques that farmers are taught. She also said that there has been continuous growth in organic exports.
Realizing the potential of organic farming in the northeastern region of the country, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare launched a central sector scheme entitled Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region for the implementation in the state of Mizoram. The scheme aims at development of certified organic production in a value chain mode to link growers with consumers and to support the development of entire value chain starting from inputs, seeds, certification to the creation of facilities for collection, aggregation, processing, marketing, and brand building initiative.
Mission Organic Mizoram currently has 27,604 enrolled farmers who raise a range of crops on 26,500 acres of land. Mission Organic Mizoram was founded in 2016 and works with service providers throughout the state to help and encourage farmers. In Mizoram, organic farming is easier to implement with locally accessible resources process and is more economical and environmentally friendly. Farmers in Mizoram and the Northeast as a whole have long recognized that the ecology of future is more significant than the economy of today, and they can lead the way in this area of agriculture. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani Aizawl.
पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात के कच्छ जिले में हाल ही में विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा अपने स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन और समापन भव्य तरीके से किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस पर सुरक्षित तट के संदेश के साथ जवानों की साइकिल यात्रा पश्चिमी कच्छ के लखपत से शुरू हुई, जबकि असम राइफल्स की वीरता और विरासत की याद में अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई मोटरसाइकिल रैली कच्छ के रण में संपन्न हुई। सुरक्षा कर्मियों के इन दौरों से नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना और मजबूत हुई है।
गुजरात का कच्छ जिला पाकिस्तान से सटा सीमावर्ती क्षेत्र है। अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति वाले इस क्षेत्र में असम राइफल्स की वीरता और विरासत की याद में आयोजित ऐतिहासिक मोटरसाइकिल रैली शौर्य यात्रा का कल समापन हुआ। यह यात्रा 10 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर से शुरू हुई। इस 15 दिवसीय यात्रा के दौरान बाइकर्स ने 9 राज्यों में 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। यह यात्रा विजयनगर से शुरू होकर जयरामपुर, जोरहाट, दीमापुर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, वाराणसी, ग्वालियर, उदयपुर और अहमदाबाद होते हुए भुज पहुंची। असम राइफल्स की 190वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित यह यात्रा भारतीय सेना, असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के संयुक्त प्रयास का परिणाम थी। यह भारतीय सेना, असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों द्वारा आयोजित अब तक की सबसे लंबी संयुक्त मोटरसाइकिल रैलियों में से एक है। इस रैली से जुड़े हुए कर्नल जितेंद्र मेहता ने कहा कि इस बाइक रैली का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन करना था।
जो हमारी ये शौर्य यात्रा, इस रैली को हमने नाम दिया है, जो 10 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में जो है विजयनगर एक जगह है जो कि भारत बर्मा बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, वहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई। जो इसका एम था वो था कि अलग अलग राज्यों से होते हुए लोगों से इंटरेक्ट करना, हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है उनसे इंटरेक्ट करना, जो हमारे रैली में जो हमारे साथ यूथ जो अरुणाचल प्रदेश का हमारे बाइक रैली में शामिल है उनको एक्सपोज करना, उनको देना ताकि वो लोगों से मिल सके, स्टूडेंट के साथ में मिल सके। और इस तरीके से जो है हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है इसका इस मोटो को जो हमने शोकेस करना है। ये रैली एक यूनिक रैली है, अपने आप में एक ज्वाइंट रैली है जिसमें कि टोटल 12 राइडर्स, उसमें 4 असम राइफल्स, 4 आर्मी और 4 हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोकल यूथ। इस तरीके से हमने पिछले 15 दिनों में 9 राज्यों में कवर करते हुए 4000 किलोमीटर से ऊपर तक की ऊपर की यात्रा कंप्लीट की है। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात भी है क्योंकि आज असम राइफल्स का 190वां जो है रेजिंग डे है। इस मौके पर हम दोनों में जो है असम राइफल्स का फ्लैग को भी हम होस्ट करेंगे और वी ऑल आर रियली प्राउड एंड रियली ऑनर्ड कि हम लोग जहां पर भी गए हैं लोगों ने हमको बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया है।
यात्रा के दौरान रैली ने 5 स्कूलों का दौरा किया और 3000 से अधिक छात्रों से बातचीत की। छात्रों को सशस्त्र बलों में अपना कैरियर बनाने तथा देशभक्ति और अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। रैली के दौरान 400 से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक स्थान पर स्थानीय समुदाय द्वारा रैली का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। सार्वजनिक संवाद, देशभक्ति कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां आयोजित की गई। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
In business news today, the benchmark domestic equity indices ended nearly flat in a volatile trade today but managed to settle in positive territory for the 7th consecutive session. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange, Sensex, rose marginally by 33 points to close at 78,017. The National Stock Exchange Nifty 50 added 10 points to settle at 23,669. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.6%, up at $73.45 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.6%, up at $69.54 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 88,190 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 98,550 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब बात खेलों की। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के छठे दिन निशानेबाजों और पावर लिफ्टर्स ने अपने असाधारण कौशल और शानदार खेलों का प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आज आकाश ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में सबको पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतिस्पर्धा में संजीव कुमार ने रजत और रुद्रांश ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पावर लिफ्टर्स ने अपना दमखम दिखाया। एलीट 80 किलो में संदेशा बीजी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मुरुगन ने रजत और जयदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं कस्तूरी ने एलीट 67 किलो में स्वर्ण पदक जीता, इसमें मेघा पांडे ने रजत और जीवनी ने कांस्य पदक जीता। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव जयवंत GH ने देश भर में पैरा खेलों को बढ़ावा देने में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये पहल एथलीटों को आगे बढ़ने और उनके सपनों को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।
ये बहुत ही बढ़िया अनोखा एक संगम बोल सकते हम, यहाँ पे लोग आए हुए है और गवर्नमेंट ने जो जितना भी सपोर्ट दिया बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। इसके वजह से एक खिलाड़ी उभर रहे है और आगे जाके एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, पेरिस पैरालंपिक में भी जो हमने 29 मेडल लेकर आए हैं, आने वाले लॉस एंजल्स में ओलंपिक के लिए भी तैयारी चल रही है प्लेयर्स के।
मेडल टैली के अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अब तक 164 स्वर्ण पदक दिए जा चुके हैं। इसमें 30 स्वर्ण पदक के साथ हरियाणा पहले स्थान पर है, 25 स्वर्ण पदक के साथ तमिलनाडु दूसरे और 22 स्वर्ण पदक के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। परिक्रमा के लिए अभिषेक कपिल।
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember the Gandhian and freedom fighter Usha Mehta, who was born on the 25th of March 1920 at Surat.
From a young age, she found herself to be an active participant in the fight against British rule. In 1928, at the age of 8, she took part in her first protest against the Simon Commission. As a young child, she would protest in front of liquor shops and secretly distribute various publications. During the salt satyagraha, she would bring seawater to her home and produce salt out of that.
In 1939, Usha Mehta completed her graduation from Wilson College, Bombay and began to prepare to study law. However, with the announcement of the Quit India movement in 1942, she decided to halt her studies and join the freedom struggle.
In the 1942 Congress session, Usha Mehta was privy to the powerful speeches given by Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and Sardar Vallabhbhai Patel. This gave her the impetus to organize a secret radio station and help deliver the Indian perspective to the remotest corners of the world.
On the 14th of August 1942, Dr. Usha, along with her associates, launched the first announcement of Congress Radio. In this show, she delivered the news bulletin in both English and Hindi. The show would commence with the song Hindustan Hamara and close with Vande Mataram. Despite the strict vigil maintained by the British authorities, her station fearlessly reported the atrocities committed by the British.
To remain underground, they needed to frequently change their positions so as to remain hidden from the British radar. During the Quit India movement, they had to change around 7 to 8 stations. On the 12th of November 1942, as they were hosting a show from Girgaon, the police arrested Usha Mehta along with her associates. She was sentenced to 4 years of rigorous imprisonment.
When she was released in 1946, she became the first political prisoner to be released in Bombay. When she was released, Dr. Usha said,
I came back from the jail happy and proud because I had the satisfaction of carrying Bapu's message, do or die, and having contributed my humble mite to the cause of freedom.
On the 11th of August 2000, Usha Mehta passed away at the age of 80. Her zeal and enthusiasm to fight for her country is a true inspiration. We salute the daughter of the soil.
We also remember freedom fighter Vasant Rao Lakangauda Patil. V.L. Patil was born on the 25th of March 1922 in Belgaum district of Karnataka.
Patil began his higher education at Rajaram College, Kolhapur, but was unable to complete his degree due to his involvement in the freedom movement. Vasantrao was instilled with the spirit of patriotism and social service by his teachers like Dr. M. R. Desai, Acharya Zavadekar, N. S. Hardikar and Barrister Khardekar. While in Kolhapur, Vasantrao came in contact with a radical freedom fighter, Nana Patil, who further bolstered his decision to take part in the freedom struggle.
Under Nana's guidance, Vasantrao became actively involved in various activities in the surrounding regions. This led to the assassination of his younger brother, Pratap Rao. Due to the grief of losing his only brother, Vasantrao left college in 1943 and plunged into the freedom struggle. As Vasantrao continued his activities with even more vigor against the British administration, he became one of the most wanted men in the region, leading to shoot-at-sight orders for him by the British administration.
Post-independence, V.L. Patil served as a Member of Parliament from 1962 to 1967. From 1969, he was elected to the Legislative Assembly of Karnataka multiple times and served as minister in various ministries till 1989.
He was awarded the Indira Gandhi Sadbhavna National Award in 2008 for the various social endeavors in his life.
V.L. Patil left for his heavenly abode on the 9th of December 2012.
श्रोताओं, अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। आज सबसे पहले याद कर रहे हैं निमी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रहीं। इनका असली नाम था नवाब बानो। निमी का फिल्मी करियर सहायक अभिनेत्री के तौर पर राज कपूर और नरगिस अभिनीत फिल्म बरसात से शुरू हुआ। बरसात फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। फिल्म के लोकप्रिय शीर्षक गीत बरसात में हमसे मिले तुम निमी पर ही फिल्माया गया।
बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
निर्देशक के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड उनकी आखिरी फिल्म थी। निमी की मुख्य फिल्मों में सजा, दाग, अमर, बसंत, बहार, पूजा के फूल, सोहनी महिवाल आदि शामिल हैं।
डैनी वेलैंड सील्स और डैन सील्स, आल्सो नोन एज इंग्लैंड डैन, वाज एन अमेरिकन म्यूजिशियन हु पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 2009। ही वाज द यंगर ब्रदर ऑफ सील्स एंड क्रॉप्स मेंबर जिम सील्स। सील्स फर्स्ट गेन फेम एज वन हाफ ऑफ द सॉफ्ट रॉक डियो इंग्लैंड डैन John Ford Coley, which charted nine singles between 1976 and 1980. After the duo disbanded, Seals began a solo career, starting in soft rock before shifting to country music. Let's listen in to his hit track, Everything That Glitters, and it's from his 1985 album, Won't Be Blue Anymore.
On poster, in a cafe out in Phoenix. Guess you're still the sweetheart of the rodeo. As for me and little Casey, we still make the circuit in a one-horse trailer and home.
आज फिल्म अभिनेत्री नंदा की भी पुण्यतिथि है। इन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में विशेष रूप से कार्य किया। 60 और 70 के दशक की इस अदाकारा ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। अपने संवेदनशील अभिनय से उन्होंने कई फिल्मों में अपनी भूमिकाओं को बखूबी जीवंत किया।
डोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हजूर।
अरे ही बंधन है प्यार का, आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां।
Yes, and Nanda, regarded as one of the finest actresses of Indian cinema, her career spanned over 30 years, is best known for her performances in Choti Behan, Dhul Ka Phool, Bhabi, Kala Bazaar, Kanoon, Hum Dono, Jab Jab Phool Khile, Gumnaam, Ittefaq, The Train and Prem Rog.
आज जयंती है डॉक्टर वसंत रणछोड़ गोवारिकर की। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1984 में पद्मश्री और सन 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके उल्लेखनीय योगदानों में से एक मॉनसून की सटीक भविष्यवाणी के लिए पहला स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान मॉडल का विकास है। इन्हीं के नेतृत्व में इसका संचालन किया गया।
James Arthur Lovell Jr. was born on this day in 1928. He is an American retired astronaut, naval aviator, test pilot and mechanical engineer. In 1968, as command module pilot of Apollo 8, he became one of the first three astronauts to fly to and orbit the moon with Frank Borman and William Anders. He then commanded the Apollo 13 lunar mission in 1970, during which, after crucial failure en route, he looped around the moon and returned safely to Earth.
आज जन्मदिवस है भारतीय फिल्मों के निर्देशक और निर्माता शिबू मित्रा का। FTII पुणे से स्नातक करने के बाद शिबू मित्रा ने अनुभवी निर्देशक बासु चैटर्जी के सहायक के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने उनसे व्यवसायिक फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनका करियर बॉलीवुड में 40 से अधिक फीचर फिल्मों तक फैला रहा और इनकी फिल्में 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में विशेष रूप से लोकप्रिय थी। इनकी सबसे सफल फिल्म रही शंकर, दादा, आखिरी गोली, पांच कैदी आदि।
Yes, and Sir Elton John was born on this day in 1947. He's a British singer, songwriter and pianist. His music and showmanship have had a significant and lasting impact on the music industry. And let's listen into his hit track, Can You Feel the Love Tonight? And it's from the 1994 hit movie, The Lion King.
To the rush of day, when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you.
Yes, and Aretha Louise Franklin was also born on this day in 1942. She was an American singer, songwriter, and pianist. Honored as the Queen of Soul, she was twice named by Rolling Stone magazine as the greatest singer of all time. Franklin is among them with over 75 million records sold worldwide. Let's listen in to a hit track, Respect.
आज जन्मदिवस है ग्वालियर घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित मुकुल शिवपुत्र का। ये पंडित कुमार गंधर्व के पुत्र और सबसे बड़े शिष्य हैं। इन्होंने केजी गिंडे से ध्रुपद और धमार तथा एमडी रामनाथन से कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली। आइए आपको सुनाते हैं इनकी एक बंदिश।
भमनायक सुगना दे जाय रे, भमनायक सुगना दे जाय रे, एक सुगना दे जाय, भमनायक सुगना दे जाय।
Yes, and Lieutenant Colonel Prem Kumar Sehgal was born on this day in 1917. He was an officer of the British Indian Army. After becoming a Japanese prisoner of war, he served as an officer in the Indian National Army, which was led by Subhas Chandra Bose and had been set up by the Japanese to fight against British rule in India.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार।